संत नाभादास जी द्वारा लिखी हुई भक्तों की जीवन गाथा भक्तमाल, जिन्हें सरल भाषा में आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे अपने प्रभु जी के परम भक्त अरविंद चौधरी जी।
राधे राधे।
हरी सो जग वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सो पंत, सदगुरु सो सज्जन नहीं, भक्तमाल सो ग्रंथ। भक्तमाल जैसा कोई ग्रंथ नहीं है, प्रेम पंथ जैसा पंथ नहीं है, और सदगुरु जैसे सज्जन नहीं है, और हरी जैसी कोई वस्तु नहीं है। श्री राधे, आज हम जो चरित्र करने वाले हैं वो श्री मैत्रेय जी का है, मैत्रेय ऋषि का चरित्र है। श्री राधे राधे, शुरू करते हैं। कहा जाता है कि जब आप भगवान से करुण पुकार करते हैं ना, कोई भी करुण पुकार करें आप भगवान से, भगवान उसे पूर्ण करने के लिए तत्पर रहते हैं। और भक्तों की करुण पुकार अगर हो तो उसे तो प्रभु तुरंत करने के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसे ही यदि भगवान से पुकारा जाए भगवान को कि मुझे भक्ति दे दो, मुझे सन्मार्ग पर लगाओ, ऐसी पुकार भगवान बहुत शीघ्र सुनते हैं। बल्कि बहुत सारे लोग तो ऐसी पुकार करते हैं कि मुझे धन दे दो, मुझे ये सुंदर स्त्री मिले, मुझे कार मिले, बंगला मिले। ऐसी पुकार में भले ही देर हो, लेकिन जो सन्मार्ग पे चलने की पुकार है इनमें बिल्कुल देर नहीं होती, और भगवान हमेशा तत्पर रहते हैं पूरा करने के लिए। ऐसे ही हम श्री मैत्रेय जी का चरित्र आपको कहते हैं। मैत्रेय ऋषि वो हैं जब भगवान श्री कृष्ण जी परमधाम जा रहे थे, ये धरा छोड़कर गोलोक को जा रहे थे, तो उस समय अंतिम उनके जो दर्शन किए हैं वो श्री मैत्रेय ऋषि जी और उद्धव जी ने किए हैं। भगवान के जो अंतिम उपदेश भी हैं मैत्रेय जी ने और उद्धव जी ने सुने हैं, तो भगवान इनको उपदेश करके और धाम गमन कर गए थे। फिर मैत्रेय जी मिले थे, मैत्रेय जी के पास आए थे सुनने के लिए विदुर जी, तो विदुर जी को उन्होंने पूरा ज्ञान दिया था जो श्रीमद् भागवत स्कंद 3 से प्रारंभ होता है और पूरी भागवत में वो चलता है कि उन्होंने किस तरीके से क्या क्या उनको बताया है मैत्रेय जी के। वो सारे भगवान श्री कृष्ण जी के ही वाणी और प्रवचन और उपदेश हैं जो भागवत जी में चलते हैं। तो अभी हम मैत्रेय जी के चरित्र पर वापस आते हैं। एक बार वेद व्यास जी, ऋषि वेद व्यास जी जंगल में विचरण कर रहे थे। विचरण करते हुए उन्हें देखा कि एक रास्ते पर पीछे से एक बैलगाड़ी आ रही है, और जहाँ से बैलगाड़ी के जो व्हील हैं, पहिए हैं, जहाँ से चलते हैं, तो उसकी जो लाइन बनी रहती है, लकीर जिसे कहते हैं, उसमें कीड़ा, मोटा सा तगड़ा कीड़ा दौड़ रहा है उसमें तेज। वेद व्यास जी ने देखा, अरे भाई, वो क्योंकि ऋषि हैं, ऋषि तो दिव्य हैं, तो वो उसके मन की बात भी जान सकते हैं और अपने मन की बात वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। तो वो कनेक्ट हुए उससे और उससे पूछा, तुम इतनी तेज़ क्यों दौड़ रहे हो भाई, ऐसा क्या हुआ? उसने कहा कि पीछे ये जो गाड़ी आ रही है मुझे डर है ये मुझे मार देगी। और मैं बोले, तेरी कीड़े की योनी है, मर के छुटकारा होगा और क्या। बोलेगा, नहीं नहीं महाराज, ऐसा नहीं है, जो जिस भी योनी में होता है उसे वही योनी अच्छी लगती है। मैं भी इस योनी से प्रेम करता हूँ, मैं भी इसे छोड़ना नहीं चाहता हूँ। और वो कहने लगा कि महाराज, इससे बुरी ही योनी मिलेगी मुझे पक्का, इससे बढ़िया तो मिलेगी नहीं। वो बोले, ऐसा क्यों? बोले, मुझे अपने पूर्व जन्मों का याद है कि पूर्व जन्म में मैंने वेद के विरुद्ध कार्य किए हैं, सारे मेरे अधर्म कार्य हुए हैं, सिर्फ मेरे से 2 अच्छे कार्य हुए थे पूरे जीवन में। एक तो मैंने अतिथि सत्कार किया था, एक बार कुछ लोग आए हुए थे उनका आतिथ्य सत्कार अच्छे से किया, और दूसरे मैंने अपनी माँ की सेवा की है, और उन्हीं दोनों फल के स्वरूप मुझे ये ज्ञान है कि पिछले जन्म में मैं क्या था। और मनुष्य जो भी जीव होता है, जीव को उसमें के कर्मों का ही फल मिलता है, तो मुझे तो मेरे कर्मों का ही फल मिलेगा। अब मुझे ज्ञान हुआ है कि मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार अनंत योनियों में भटकता रहता है और वो दुख पाता रहता है, और इसमें तो एक यही है कि भगवत कृपा हो जाए और जीवन मरण से हमारा पिंड छूट जाए। बस हम तो यही चाहते हैं कि वो कैसे होगी वो भगवान की कृपा। वेद व्यास जी ने उसके ऐसे वचन सुने, कीड़े के उसके मतलब हृदय की बात सुनी कि ये भगवत स्मरण कर रहा है कि इस भगवत प्राप्ति हो जाए इसे। उसने कहा कि तू दिक्कत मत कर, बिल्कुल भी तू निश्चिंत हो जा, टेंशन मत ले, तू जिस भी योनि में जाएगा मैं तुझे प्रवचन करूँगा, और जब तेरी अच्छे कर्मों की योनि शुरू होगी वहाँ पर मैं तुझे भगवान से जोड़ने का कार्य करूँगा, मतलब मैं तुझे भगवत प्राप्ति करा के ही रहूँगा। अब मैं प्रतिज्ञा करता हूँ तेरे साथ, तो तू भूल जा, किसी भी योनि में जाए, उस योनि में जहाँ भी होगा मैं खुद कनेक्ट करूँगा तुझसे। वो निश्चिंत हुआ, कीड़ा रुका, गाड़ी आई, उसे मार के चली गई। फिर इसका दूसरा जन्म होता है क्योंकि इसने मरते हुए एक ऋषि का दर्शन किया है, और ऋषि भी कौन, भगवान स्वरूप श्री वेदव्यास जी महाराज। तो इनको ये क्षत्रिय कुल में पैदा हुए और वहाँ पे अपना जो भी प्रजा थी उनका देखभाल इन्होंने की और ये सदचरित्र हुए। वहाँ पर आकर वेदव्यास जी ने इनको वेदों का और धर्म का उपदेश किया, उसके अनुसार इन्होंने जीवन व्यतीत किया। और जब इनका अंतिम समय आया, ये सब कुछ छोड़ के वन में चले गए और भगवान स्मरण करने के लिए, और इन्होंने वहीं पर ही अपने जीवन को त्याग दिया। जब इनकी मृत्यु हुई उसके बाद फिर इन्होंने एक ब्राह्मण के यहाँ शरीर धारण किया। तो जब ये पाँच वर्ष की इनकी अवस्था थी, तब फिर इनके पास वेद व्यास जी आए और इनको फिर धर्म का उपदेश किया। इनकी बुद्धि इतनी कुशाग्र हो गई थी, पिछले जन्म में इन्होंने जो अंतिम समय में भगवान का ध्यान और भगवान का भजन किया था उससे, कि इन्होंने 5 वर्ष की अवस्था में ही वेदों का अध्ययन कर लिया था। इन्होंने वेद पुराणों का अध्ययन किया वेद व्यास जी से, और आजीवन इन्होंने धर्माचरण करके वो जीवन भी इन्होंने बिताया वेद व्यास जी के कहने के अनुसार। अगला जो इनका जन्म हुआ, यानी तीसरा जन्म, इसमें ये हुए मित्रा, इनकी माता का नाम था, और ये मैत्री ऋषि बन के पैदा हुई। ये वही कीड़ा, ये मैत्री ऋषि हैं तीसरे जन्म में। फिर वेदव्यास जी से संपर्क हुआ, वेदव्यास जी के पिताजी जो पराशर मुनि थे उनसे इन्होंने विष्णु पुराण सीखा, और होरा शास्त्र जो ज्योतिष शास्त्र है, पराशर होरा शास्त्र का भी इन्होंने अध्ययन पराशर जी से किया। अच्छा, जब वो विष्णु पुराण पढ़ा रहे थे मैत्री ऋषि को, तो उन्होंने मैत्री ऋषि को कहा कि इस विष्णु पुराण को तुम कलयुग के अंत में शिनीक को पढ़ाओगे। कलयुग के अंत में, मतलब वो अब तक जीवित हैं मैत्री ऋषि, और कलयुग के अंत में कहने का तात्पर्य ये था कि जब कलयुग का अंत आएगा वो ऐसा घोर समय हो चुका होगा कि कहीं पे भी हमें जो अभी बहुत इजीली अवेलेबल हैं सब पुराण शास्त्र वेद गीता रामायण, उस टाइम मिलने भारी हो जाएंगे दूर दूर तक, जिस टाइम वो कलयुग का भयंकर समय आएगा, और उस टाइम इनको वो सारी चीज़ें याद रहेंगी और ये शिनीक को वो सारी चीज़ें बताएंगे आगे ट्रांसफ़र करने के लिए सतयुग में। तो भगवान की कृपा से आज भी मैत्री ऋषि हम सब लोगों के बीच में है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में विद्यमान हैं, और बहुत सारे लोगों को जो ऐसे जो तपस्वी लोग हैं उनको आज भी दर्शन देते हैं मैत्री ऋषि, जैसे अत्रि मुनि अंगिरा जी विद्यमान हैं, हनुमान जी हैं, कृपाचार्य जी हैं, ऐसे ही मैत्री जी भी धरा पर विद्यमान हैं। तो श्रीहरि अपने भक्तों की सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। अभी ऐसी एक कथा हम बताते हैं, श्री लाली जी की है, श्री नीरा जी की है, श्री बांद्रा रानी जी की है, ऐसी बहुत सारी स्त्री महिलाएं भी हुई हैं जिन्होंने भगवान से प्रार्थनाएं की और भगवान ने यहाँ तक कि अपने आप को उनको दे डाला। जैसे एक भगवान की भक्ता थी, वो भगवान के सभी संतों को भक्तों को भोजन कराया करती थी, संत सेवा करती थी, बड़े चाव से संत सेवा करती थी, लेकिन वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती रहती थी कि कभी तो दर्शन दो प्रभु, कभी तो दर्शन दो, दर्शनों की बड़ी लालसा थी। एक बार एक संत आए हुए, वो बड़े प्रेम से उनको भोजन करा रही होती है, भोजन कराते हुए उसके मन में यही आता है कि हमें तो कभी भगवान के दर्शन ही नहीं हुए, हमारा जीवन बीत गया लेकिन हमें कभी भगवान के दर्शन नहीं हुए। उन्होंने उन संत महाराज के सामने भी यही प्रश्न रखा कि महाराज हमें भगवान के दर्शन नहीं हुए हैं अभी तक, और बोलते हैं कि भगवान तो दर्शन देते हैं। संत महाराज बोले कि आपको 3 बार भगवान ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए हैं। वो बोले क्या बात कर रहे हैं, मुझे तो कभी नहीं मिले हैं। बोले नहीं, वो आपके यहाँ पे खाना खा के गए हैं भगवान। बोले अच्छा, कब कब? उन्होंने वो 2 बार की पिछली घटनाएं बता दी कि एक बार तब आए थे भगवान, आपने उनको ये खिलाया था, यहाँ पे बैठे थे ऐसे ऐसे, उसको याद आया कि हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बार फिर बताया कि दूसरी बार भगवान ऐसे वेश में आए थे ऐसे ऐसे करके, और उसको याद आ गया, जी हाँ बिल्कुल। उसने पूछा और प्रभु तीसरी बार? तो वो संत मुस्कुराए कि तीसरी बार की घटना भी आपको याद आएगी, वो हमारे बताने की आवश्यकता नहीं है। ये समझ गई कि ये ही भगवान है, क्योंकि ये दूसरी बार दोनों बार की घटनाओं को भी ऐसे बता रहे हैं और तीसरी बार की यही घटना है, ये स्वयं भगवान है। तो उन्होंने भगवान को पकड़ना चाहा कि भगवान को पकड़ लेते हैं और वो साधु अदृश्य हो गए, यानी वही भगवान थे। तो भगवान अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं, यदि उनकी दर्शनों की भी आकांक्षा होती है तो भगवान आते हैं। किस रूप में भगवान दर्शन देने आ जाएं हमें नहीं पता होता है, लेकिन भगवान दर्शन भी देते हैं, साक्षात स्वरूप में भी देते हैं और किसी भी रूप में भगवान छद्म वेश में हमारे सामने आ जाते हैं, लेकिन भगवान सारी मनोकामनाएं भक्तों की पूर्ण करते हैं। अगर निष्काम कामना है तो उसको तो भगवान तत्पर रहते हैं। इसी तरह एक और भक्ता थी, वो उसके जो पति थे वो भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए गए हुए थे और वो दंडवत करते करते ही पूरी यात्रा कर रहे थे दर्शन की। उन्होंने बड़ी कठोर उनकी तपस्या थी भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने की। इधर घर में क्योंकि वो संत सेवा करते थे तो इनकी पत्नी ने कहा, अपने मन में सोचा कि प्रभु मैं संत सेवा यहाँ इनकी जो भाव है वो मैं डिगने नहीं दूंगी, मैं पूरी संत सेवा वैसे ही करूंगी, पर प्रभु इनको तो वहाँ दर्शन दोगे आप, मुझे यहाँ दर्शन देना। उसके मन में ऐसा भाव आया और उसने वही संत सेवा शुरू कर दी। अब घर में कुछ आमदनी तो थी नहीं क्योंकि पति चले गए थे, पर ये संत सेवा करती रही। सब जो भी वो घर में रखे गए थे वो सब खत्म हो गया। फिर इसने क्या किया, अपने जो भी इनके गहने थे सारे वो बेचे संत सेवा में धीरे धीरे करके, कि जब तक पति नहीं आता, पति का ये नहीं पता कब आएगा, क्योंकि दंडवत करते हुए वो यात्रा कर रहा है तो उसमें कितना लंबा समय लगेगा, सालों लग जाएंगे आने वापस आने में भी। तो इसने अपने सारे गहने बेच के साधु संतों की सेवा करी, उनको प्रसाद पवाती रही। जब गहने ख़त्म हो गए, घर के बर्तन बेचना शुरू कर दिए। इनके बर्तन भी जब बिक गए, ख़त्म हो गए, घर में कुछ नहीं बचा, तो इनको बड़ी दुविधा हुई मन में कि हे भगवान, अब मेरे पास तो कुछ बचा भी नहीं है यहाँ पे सेवा करने के लिए आपकी, और मेरा वचन प्रभु खाली रह जाएगा। तो वहाँ के जो उस गाँव के सेठ थे उनके स्वप्न में भगवान, वो भी भगवान को मानते थे, भगवान ने दर्शन दिया और उनको कहा कि जाके उनकी मदद करो। वो बड़ा विश्वास करते थे, सुबह जब वो जगे उन्होंने बहुत सा धन उनको दिया, उनकी सेवा पूरी हुई। जब उनके पतिदेव वहाँ से दर्शन करके वापस आए तो कहा जाता है कि वो इधर आए हैं, इधर भगवान इनके यहाँ पे प्रत्यक्ष प्रकट हुए और प्रत्यक्ष भगवान ने यहाँ दर्शन दिए, और पतिदेव भी आए, पतिदेव ने भी यहाँ अपनी पत्नी के साथ दर्शन दिए, और भगवान ने कहा कि मैं पूरी से आके दर्शन दे रहा हूँ आपको यहाँ पे, कि इसका प्रेम मुझे खींच लाया है। तो संत सेवा में, भक्त सेवा में, संत सेवा में इतनी बड़ी शक्ति होती है कि वो भगवान को भी खींच लेते हैं। तो आप संत सेवा और भक्त सेवा जितना हो सके कीजिए तो भगवान खींचे आएंगे, दौड़े आएंगे। यहीं पे विराम देते हैं इस चरित्र को, आगे नए चरित्र के साथ फिर मिलते हैं। राधे राधे।
ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।